राम राम हरे हरे। आप सबका स्वागत है बोरसद में। यहाँ भगवत धाम गमन श्री मोहनलाल जी राठी के पहले श्राद्ध के उपलक्ष में उसके परिवार के सुपुत्रों ने उनकी स्मृति में हरि कथा और हरि कीर्तन का आयोजन किया है। इस जन्म में संतान की अभिलाषा ही मानव इसलिए करता है, पुत्र की प्राप्ति का लक्ष्य ये होता है कि पितरों को जब वो संसार से अपनी यात्रा समाप्त करके जाते हैं तो पीछे उनकी स्मृति में पुत्र पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है भगवान का कथा और कीर्तन। तो इंजीनियर सुरेश, डॉक्टर कैलाश और अशोक परिवार के साथ आज रात को यहाँ भक्तों के संग में कथा कीर्तन का आयोजन किया है। आप सब पधारे हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा सब नजदीक आ जाए ना। तो रेलगाड़ी में चढ़ते हैं ना, रेलगाड़ी में बहुत से मुसाफिर चढ़ते हैं। किसी एक डब्बे में कुछ लोग आपस में मिलते हैं, कोई बहुत अच्छा लगा है उससे बातें करने लग जाते हैं, साथ में खा लेते हैं, पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते जाते हैं, इसको देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठा है तो उसके साथ चलना तो पड़ेगा। लेकिन हर एक की मंजिल अपनी है, कोई कौन सी स्टेशन पे उतरेगा, कोई कौन सी पे उतरेगा। तो ऐसे संसार सागर में है, गाड़ी में जा रहे हैं, किसी में कोई दो लोग, एक आदमी का स्टेशन आ गया बड़ौदे में उतरने वाला। ओ बोलता, नहीं यार तुम बहुत अच्छे थे, तुम्हारे से हमारा बहुत प्रेम हो गया था, अब हमारा मन उतरने का नहीं करता है। अरे भाई, नहीं मन उतरने करेगा, लेकिन उतरना तो बड़ौदे में पड़ेगा, तुम्हारा यहाँ टाइम खत्म हो गया, इससे आगे तुम नहीं जा सकते। नहीं नहीं, मैं इधर नहीं उतरूंगा, तब तक टीटी आएगा, बोले बाबा उतरो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। तो वो उतर जाएगा, और उतर जाएगा दूसरा कोई चढ़ के आएगा, बोला ये सीट मेरी रिजर्वेशन है। बोला नहीं, अभी थोड़ी देर पहले दूसरा था। हम बोला पहले दूसरा था, अभी दूसरा, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अभी ये दूसरा आ गया। तो जैसे ये रेलगाड़ी में हम रहते हैं, रोज कितने लोग साथ जाते हैं, कोई उतरता है, कोई प्यारा लगता है, किसी से बात करना अच्छा लगता है, किसी के साथ भोजन करना अच्छा लगता है। ऐसे संसार में भी एक परिवार के डब्बे में कुछ लोग आगे इकट्ठे होते, कुछ लोग एक परिवार में डब्बे में आगे इकट्ठे होते हैं। किसी से बहुत प्यार हो जाता है, किसी से स्नेह हो जाता है, कोई बहुत मीठा लगता है, किसी से सुख मिलता है, लेकिन स्टेशन जब उसकी आती है तब तो वो उतरेगा, और नहीं उतरेगा तो भी उसको काले कोट वाला टीटी उतारेगा, बोला इसके बाद तुम्हारा चलने का अधिकार नहीं है, और वो तो चला जाएगा, उसको उतरना ही पड़ेगा। तो परिवार में भी ऐसे हम आपस में कोई पूर्ण जन्म के संस्कार ऐसे होते हैं, कोई बेटा होता है, कोई भाई होता है, कोई बहन होता है, कोई माता होता है, एक परिवार में आकर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। उस परिवार में प्रेम भी होता है, उठते हैं बैठते हैं, लेकिन हरेक के जाने का समय अलग है। वो जब अपनी स्टेशन पे उतर जाता है तो हम कहते भाई तुम मत उतरो, भाई मत उतरो कहने से काम बनेगा नहीं, और वो उतरता है। फिर एक और बच्चा आ जाता है, पोता आ गया, वो कहता अभी मेरी सीट है यहाँ, वो अपनी सीट वो ले लेगा जो पुरानी वाली सीट थी। वो गाड़ी तो ऐसे चलती रहेगी, कहीं उतरेंगे कहीं चढ़ेंगे, ये गाड़ी का सफर ऐसे चलता रहेगा। तो संसार में ऐसे सफर चल रहा है, कोई बुजुर्ग आता है चला जाता है, फिर बच्चा आता है, ये संसार इस तरीके से चल रहा है। इस संसार को ऐसे चलने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उतरते समय ऐसे उतरना चाहिए, जब आदमी गाड़ी से उतरता है ऐसे, उसके उतरने के बाद अंदर बैठे हुए आदमी कहें कि भाई अब स्टेशन पे उतर गया तो कोई बात नहीं, आदमी बहुत अच्छा था, जो चार घंटे हमारे साथ सफर किया बड़ा संतोषी आदमी था, ऐसा आदमी भले मानस ने मीठे दो वचन बोले, किसी के साथ अच्छे पांव भरे, तो वो एक चीज सिर्फ काम आती है कि उतरने के बाद पीछे जो बैठे हुए हैं वो कहें कि इसने अच्छा काम किया, उतरना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे संसार में कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं, अपना जीवन पूरा करने के बाद जाते हैं तो लोग उनकी सराहते हैं, और पीछे भगवान के नाम की अगर स्मृति किसी लोग आदमी के पीछे आती है, ये कसौटी समझ लो, ये सोने को कसते हैं ना कसौटी, कितने कैरेट का सोना है। कोई व्यक्ति जाने के बाद उसके भगवान के नाम का कीर्तन होता है तो कसौटी पे समझ लो कि वो सज्जन पुरुष था, नहीं तो भगवान के नाम का कीर्तन किसी के जाने के बाद या किसी का मन भगवान के नाम की तरफ रुचि हो, ये साधारण बात नहीं है, आम आदमी नहीं कर सकता, हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये तो जन्म जन्म के जब तक अच्छे कर्म कठे नहीं होते हैं तब तक भगवान का नाम मुख से निकलता ही नहीं है, कितनी कोशिश करो नहीं निकलेगा। भगवान का नाम मुख से निकलना एक जन्म की कमाई नहीं है, ये तो कई भाग्य से कई जन्मों की कमाई इकट्ठी होती है तब भगवान से मुख से, और उसके बाद इंसान का जन्म तो बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म, ये दुर्लभ है मानव जन्म बहुत, ये तो आसानी से नहीं मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग से मानस का शरीर मिलता है, जो सुर मतलब देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवताओं के शरीर में इतना सुख है कि भगवान की भक्ति याद नहीं आती, तो जब बहुत सुख होता है तब भी भगवान याद नहीं आता है। लेकिन मानव शरीर ऐसा है जिसमें दुख और सुख ऐसे हैं, जब दुख आता है तो भगवान याद आता है, सुख आता है तो फिर भूल जाते हैं, फिर सुख आता है दुख आता है फिर भगवान याद आ जाता है। इसलिए भागवत में कुंती महारानी की प्रार्थना है, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों को राज देकर युधिष्ठिर महाराज को राजा करके स्थापित किया, सब सुख सुविधाएं उनको दी, जब जाने लगा रथ के ऊपर चढ़ के तो कुंती महारानी ने कहा आप जा रहे हैं, बोला आप क्यों जा रहे हैं अभी, हरे कृष्णा क्या ठीक हो, बोले क्यों जा रहे हैं, अब तो हम अपने घर जाएंगे द्वारका, बोला आप क्यों घर जा रहे हैं, बोला अब आपको सुख मिल गया, आपको राज मिल गया, आप तो संतुष्ट हो, आपका बेटा अब राजा है इस पूरी धरती का, एक ही शहंशाह सम्राट है अब तो मेरा। ओह कुंती बोलती है इसका मतलब सुख तो हमको मिला लेकिन आप जा रहे हो, इसका मतलब एक सुख मेरे किस काम का कि भगवान चला जाए घर से, वो सुख मेरे किस काम आएगा जिसके आने से भगवान चला जाए, इससे तो अच्छा था जब हमारे को विपत्ति दुख तकलीफ होती थी तो आप याद तो आते थे, और आप याद आते तो आप ही जाते थे। तो ऐसी किसी ने आज तक प्रार्थना नहीं की है जैसी भागवत में कुंती महारानी की प्रार्थना है कि भगवान इससे तो कष्ट अच्छे होते हैं, कष्ट में तुम याद आते हो, जब तुम याद आते हो तो तुम आ जाते हो, तो ये सुख का करें सुख को जिसके आने से तुम हमारे घर से ही चले जा रहे हो। तो संसार में दुख तकलीफ जब आदमी को आता है तब भगवान याद आता है, भगवान की याद आती है दुख में तकलीफ में कष्ट में, इसलिए सुख दुख में समरे सबको सुख में समरे न कोय, ये सुख में समरे तो दुख काय को होए, अगर सुख में ही भगवान का नाम ले रहे तो फिर दुख आएगा क्यों। कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम है सूर्य समान, तो कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, वो माया जो है कृष्ण का, कृष्ण के पीछे क्या है माया है, संसार में से भगवान को निकाल दो तो बाकी माया बच जाएगी, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां माया नहीं अधिकार, जहां भगवान है उस वहां माया को अधिकार नहीं है, वहां माया आके कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, जहां सूर्य है तहां नहीं अंधकार, सूर्य उगेगा तो अंधकार थोड़ी हो सकता है, वो एक गुफा होती है ना बहुत गुफा जिसमें अंधेरा होता है, उसने जाके सूर्य को कंप्लेन किया कि हमारे पास बहुत अंधेरा है, ए सूरज महाराज हमारे यहां अंधेरा कुछ नहीं दिखता है, सूरज आज ने अंदर झांक के देखा बोला बताओ अंधेरा दिखाओ कहां है, अब सूरज अंदर जाएगा तो अंधेरा कहां से आएगा, भाई सूरज अंदर जाएगा तो अंधेरा आएगा ही नहीं ना, अब बताओ मुझे अंधेरा कोई लाके दिखाए, अंधेरा कहां है, अंधेरा कहीं भी नहीं, जहां रोशनी नहीं है वहां अंधेरा है, तो भगवान प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, कृष्ण प्रकाश है, तो जब भगवान को हम अपने जीवन में जोड़ेंगे तो हमारा जीवन प्रकाशमय होगा, तो हमारा जीवन सुखमय होगा। सुख कहां है, संसार में सुख नहीं है, बहुत सुंदर गुरु नानक साहब ने लिखा सुख को चाहो सदा शरण राम की ले, कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानव देह, ये मानव देह बहुत दुर्लभ है, और सुख तुमको चाहिए सच्चा तो शरण राम की ले। राम शब्द का अर्थ है आनंद देने वाला, राम माने जिसको आनंद दे, तो राम की शरण ले। सुख कहां है? सुख भगवान के शरण में है। एक छोटा सा उदाहरण है, इस मिसाल से समझ में आ जाएगा। छोटा बच्चा हो 5 वर्ष का, आपके साथ घूमने जाए अहमदाबाद में, हरे कृष्ण, हाँ आवाज आए कौन पूछा आए पे ना। छोटा 5 वर्ष का बच्चा आपके साथ अहमदाबाद घूमने जाए, बहुत बड़ी बिजी मार्केट में, तो बच्चा आपकी उंगली पकड़ी हुई है 5 साल का, बोलेगा ये देखो देखो भाई, ये मेरे को ले लो खिलौना, ये गाड़ी लूंगा, ये मोटर लेके दो, ये कपड़ा लेके दो, बड़ा खुश होगा, बड़े बाजार में पहली बार ले जाओ बड़ा खुश हो जाएगा, ये मोटर लेके दो, मेरे को ये गाड़ी चाहिए, बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन उस बाजार में बहुत भीड़ हो और बच्चे का हाथ आपके हाथ से छूट जाए, तो उस बाजार में मोटर खरीद उधर पड़ी होगी, खिलौना उधर पड़ा होगा, कपड़ा उधर पड़ा होगा, मिठाई उधर पड़ेगी, बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा? बच्चा रोएगा, बाबा बाबा रोएगा, माँ कहाँ गई, बाबा कहाँ गए, ऐसे करेगा क्या कुछ करेगा? हाँ अंगली झलोड़ी बेजाड़े बाजार में हर का शे वो सुठी लग से पई, पर जरा छोकेरी अंगली है हथ में छुट्टी तो वो शे सब उतरे बाजार, सारी बाजार उधर पड़ी होगी, लेकिन कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, क्यों? तो सुख कहां था उस चीज में? गाड़ी में था, मोटर में था, मिठाई में था, कि बाप की उंगली में था? सुख किस में था? बाप की उंगली में सुख था, सुख किसी बाहर की वस्तु में नहीं था। तो दुनिया की किसी चीज में सुख नहीं है, सुख है जब भगवान के साथ हमारा हाथ मिला हुआ होगा, तो फिर हर चीज सुखी हो जाए, सुख देगी। और भगवान से जब हमारा रिश्ता कटा हुआ होता है तो सारी चीजें सामने पड़ी होती है, फिर भी दुख का कारण होता है। अब संसार के अंदर पहले से ज्यादा हमारे पास पैसा है, पहले से ज्यादा हमारे पास रहने की सुविधा है, सहूलियत बहुत ज्यादा है, घर है, गाड़ियां हैं, मोटरें हैं, पैसा है, दुकान है, धंधे हैं, परिवार है, लेकिन फिर भी क्यों शांति नहीं है? कि भगवान से हमारा रिश्ता थोड़ा सा दूर होता चल गया है, थोड़ा दूर हो रहा है। आप जो बड़ी उम्र के यहां बैठे हैं, 50 साल पीछे जाके देखो, हर आदमी रोज मंदिर जाता था। ये माता जी सुबह सुबह मंदिर जाती थी, पहले थोड़े से दाने ले जाके डाल के आती थी मंदिर में, ये दाना मंदिर में डालने का क्या भाव होता था? कभी भी हमारे घरों में पहली और आखिरी रोटी घर का भाती नहीं खाता है, पहली रोटी गाय के लिए है, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकलती थी। दो रोटी तो पहले होती थी बाहर देने के लिए, और दाने इतने रोज मंदिर में दे के आते थे कि एक अतिथि का भोजन घर से निकलना चाहिए, और शाम को घी ले जाके दे के आते भाई वो आरती के लिए घी। तो रोज सुबह 2 बार मंदिर जाते थे घर के आदमी, हर घर से रोज आदमी मंदिर में जाते थे 2 टाइम, कोई भी मंदिर पड़ोस में होता था, ये रोज का नेम होता था। तो पैसा नहीं था, घर छोटे थे, कमाते 3 महीने थे, 4 महीने कमाते थे बरसातों में, लेकिन सुखी बहुत थे। कोई मेहमान आता था चाहते थे नहीं जाए, और अब कोई मेहमान आता है तो बोलते हैं कि कब जाए, बहुत बड़ी परेशानी है। पहले कोई छोड़ता नहीं था, पहले मेहमान को छोड़ने का दिल नहीं करता है, अब मेहमान को रखने का दिल नहीं करता है, कितनी बड़ा परिवर्तन। हालांकि खिलाने के लिए सब कुछ पड़ा है, कमी किस चीज की नहीं है, तब नहीं होता था, तब आटा घर में पड़ा थोड़ी होता था, जैसे आप जाके बाजार से आटा लेते नहीं, अरे उठ के 4 बजे आटा उस माता जी को खुद को पीसना पड़ता था, उसको उठ आटा पीसने में तकलीफ नहीं थी, मेहमान आया तो उसको खिलाएंगे, उसको खुशी होती थी। अपने पास नहीं है तो पड़ोस के लाश से ला के भी खिलाती थी, अरे हमारा भाग है मेहमान आया, तो यो सुख था उसमें, एक दूसरे से मिलते थे दिल इतना बड़ा होता था। तो वो चीज क्यों चली गई हमारे से, क्यों? सिर्फ एक चीज हमारे से कम हो गई। अभी भी अभी हम अभी दिल छोटी इसलिए हो गई कि भगवान से रिश्ता हमने थोड़ा कम कर दिया। अब कल की बात है, कल विद्यावल्लभ विद्यानगर में रात को सत्संग रखा था, और इस उम्र के लड़के, ये उम्र के लड़के और लड़कियां 300 आए थे, तो 300 बच्चों को 7:30 बजे बुलाया था, 9:30-10 बजे तक सत्संग था, और सत्संग किया कि आध्यात्मिक प्रगति कैसे की जाए। ये इस उम्र के बच्चे थे, और सब बच्चों के लिए पूरी सब्जी चावल कड़ी खीर, हाँ खीर और आलू बड़ा पूरा फुल प्रसाद सबको खिलाया, और हमने कल फिर मंगाया है, कल फिर 4 से 6 बजे तक वो बच्चे लोग दूसरे आएंगे, तो हमको उनको खिलाने में खुशी होती है। तो भगवान का घर है ना, मंदिर है, मंदिर है तो भगवान का घर है। 200 आए, 400 आए, 500 आए, हमारा दिल होता है कि इसको खिलाओ। तो भगवान के घर में मेहमान आने से खुशी होती है कि भगवान के घर में इनको बुलाओ, प्रसाद खाए, भगवान की कथा सुने, कीर्तन सुने। तो हर रविवार को ऐसे मंदिर के अंदर, तो भगवान के घर में कोई आता है तो कोई आपत्ति नहीं। वो कहते हैं नहीं कल फिर आना, अब जरूर रोज आया करो। कितना बड़ा अंतर है, भगवान के घर में कहते हैं रोज आया करो, और अपने घर में कोई अपना रिश्तेदार भी आए तो कहते फिर अगली बार आप कब आपके आने का प्रोग्राम, रिटर्न टिकट आपका कब बना हुआ है। तो क्यों ऐसे हो गया? आप जो आप जो आप जो तो ये ऐसे क्यों हो गया है? इसलिए हो गया है कि जो चीज हमारे अंदर अच्छे सद्गुण लाती है, अतिथि सत्कार सद्गुण में आता है। अतिथि देवो भव, वेद ने कहा है अतिथि देव है। अतिथि का मतलब क्या है? जो तिथि बता के नहीं आए, तब मैं आऊंगा ये नहीं बताया थे, आज आ जाए तो उसके लिए बड़ा दिल में जगह होनी चाहिए। अतिथि देवो भव, तो वो हमारे से अंदर से क्यों निकल गया? क्योंकि ये सब शिक्षाएं जो धर्म थी, हम सब आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, ये हमारे मन में हर एक आदमी चाहता है ना, मेरे बच्चे में अच्छे लक्षण हो। तो अच्छे लक्षण हो, चरित्र अच्छा हो, ये तो सब चाहते हैं, लेकिन चरित्र अच्छा किसमें होता है ये तो पता नहीं है। मैं आपको कहूंगा पानी पिलाओ, तो आप कोई पानी पिलाने के लिए कहीं से गिलास लोटा तो लाना पड़ेगा ना, तो पानी के लिए कोई बर्तन तो चाहिए तब पानी में पीऊंगा ना, तो कोई बर्तन होगा तब पानी पिएंगे। ऐसे चरित्र के लिए भी तो कोई बर्तन चाहिए ना। आध्यात्मिकता वो बर्तन है जिसमें चरित्र रहता है। चरित्र किसमें रहता है? आध्यात्मिकता के बर्तन में रहता है। जिस टाइम आध्यात्मिकता माने रूहानी, जिस टाइम भगवत भक्ति का बर्तन हाथ में नहीं है तब तक चरित्र नहीं आएगा। तो चरित्र का पात्र आध्यात्मिकता है, पात्र होगा तभी चरित्र उसके अंदर बैठेगा। अब चाहे कि बच्चे अच्छे हों तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने घर के अंदर आध्यात्मिक वातावरण बनाना चाहिए। आज सुबह क्लास में हम कह रहे थे, जहां टीवी को रखते हैं 10,000 रुपया खर्च करके टीवी लाते हैं, अरे बाबा टीवी जितनी जगह में, घर में एक भगवान का मंदिर रखो, गोपाल जी को घर में बिठा दो, और जितना टाइम टीवी का देखते हो तुम लोग विचार करके देखो, वो उसके आधे टाइम जितना भगवान का नाम ले लो, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। जितना टाइम टीवी के बात देखने में लगाते हो उसके आधे जितना भगवान का भजन कर लो, जन्म सफल हो जाएगा। टीवी देखते देखते कुछ नहीं है, बच्चे टीवी देखने के बाद आपके पास आएंगे तो बोलेंगे डैडी तुम्हारे को यहां एक मुक्का मारूं कि यहां मार के दिखाऊं, तो उधर देखते ही है। ऐसे कोई बच्चा टीवी देख के आके नहीं कहेगा बाबा मैं आपके पांव पड़ रहा हूं, नहीं करेगा। लेकिन चरित्र तब इनमें आएगा जब आप घर के अंदर आध्यात्मिक वातावरण, तो हर घर के अंदर भगवान को रखो, भगवान के लिए जगह बनाओ घर में। और जो भोजन माता जी बनाती हैं घर में, वो भगवान को पहले भोग लगाओ, अपने रसोई में भगवान के लिए स्थान बनाओ, भोजन शुद्ध। आप लोग तो ये तो हमारा, ये हमारे लोग तो ऐसे परिवार से हैं जो शुद्ध वैष्णव पहले से हैं, कृष्ण भक्ति हमारी जो है वो जन्म से हमारे खून में है। तो ये हमारे हमारे देश में ये चीजें बहुत नकामन थी, और वो शुद्ध आहार हमारा है, सिर्फ एक ठाकुर जी का भोग लगना चाहिए। वो प्रसाद आप बच्चों को खिला के देखो कि उनके जीवन में कितना परिवर्तन आता है, कितना चरित्र उनका उत्तम होता है, ये आप घर में उपयोग करके देखो। प्रसाद जो भोजन जो बनता है ना, उसमें बनाने वाले का भाव है ना, वो बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन लाता है, बड़ी तब्दीली लाता है जीवन में। भोजन भोजन से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मां जो प्यार से भोजन बना के बच्चे को खिलाती है, उस भोजन में और एक बाहर होटल में खा के आओ, दोनों में दिन रात का फर्क है, मानसिकता ही बदल जाएगी। तो बनाने वाला, भोजन बनाने वाला जो है ना, उसके दिमाग में आपके लिए क्या भाव है? कोई जो होटल में बनाता है उसको थोड़ी कि कोई फलाना गोपाल दास जी खाएगा, इसको प्रेम से बना खिलाओ, कोई खाए, काला कुत्ता खाए, हमें क्या लेना उससे। तो जो उसका कोई मानसिकता, ये तो पैसा देगा वो खाएगा, लेकिन जो प्रेम, माँ जिस प्रेम से उठ के आटा सुबह सुबह आटा पीसती थी, फिर मही बिलोना करके मक्खन निकालती थी, दही अपने हाथ से रोटी खिलाती थी बच्चों को, तो वो बच्चे 5, 6, 7, इतना बड़ा परिवार होता था, 7 सारी उम्र रहते थे, माँ बाप की सेवा करते थे, एक नहीं 7 होते थे तब भी 7 रहते थे, सेवा करते थे, क्योंकि माँ ने प्रेम से सबको खिलाया हुआ था, अपने हाथ का बना बनाया प्रेम से आनंद से खिलाया करती थी। और सबको प्रेम, इन हमारे घरों में ये सब उन्हें देखा हुआ है कि माँ बैठती थी, सबको परेस के देती थी, एक एक बच्चे को सबको बिठा के खिलाती थी और आखिर में खाती थी। जिस घर में ये परिपाटी है कि सबको खिला के और बड़ा बाद में खाएगा, उसके घर में कभी कमी नहीं आएगी, बरकत ही बरकत होगी। ये उसको कहते हैं द्रौपदी का देगड़ा। द्रौपदी के देगड़े में जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी सब खा सकते थे। महाराज युधिष्ठिर तो सब साधुओं को भोजन करा के फिर किया करते थे। जब वनवास जाने लगे तो बड़ा दुख हुआ। द्रौपदी को कहा अब कोई अतिथि आ जाएगा तो कहां से खिलाएंगे, वन में तो कुछ है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये तो बड़ी समस्या हो गई, अब क्या करें। व्यासदेव से पूछा तो बोला सूर्यदेव की उपासना करो। सूर्यदेव की उपासना करी तो सूर्यदेव ने एक बर्तन दे दिया, बोला इस बर्तन में तुम पकाओ, सबको खिलाओ, तुम आखिर में खाना, तुम्हारे खाने के बाद इसमें से दूसरे दिन तक कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन तुम जब तक नहीं खाओगी जितनों को चाहो उतनों को खिला सकती। तो द्रौपदी का ऐसा बर्तन था, वो सबको खिलाती थी, जितने आदमी आए खा लें, लेकिन खुद खाने के बाद बर्तन कुछ नहीं देता। तो ऐसे जो माता घर में सबको खिला, ऐसे नहीं पहले चख लूं कैसे है, पहले मैं खा लूं थोड़ा सा, एक कटोरी के अंदर टेस्ट कर लूं, उसमें बरकत कभी नहीं होगी। ये पहला सिद्धांत है कि घर का भोजन की रसोई का सिद्धांत ये। तो दुर्वासा दुर्योधन के पास दुर्वासा चला गया, उसने तो 56 भोग खिलाया और सिर्फ जलाने के लिए कि पांडव बैठे हैं साथ में वन में है काम वन में, महाराज आप उधर चले जाओ आपकी सेवा करेंगे, इसलिए कि वहां जाएगा 10,000 इसके चेले साथ हैं, कहां से खिलाएगा, वो खिलाएगा नहीं, उनको साप देगा तो पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा, वो द्वेष करके वहां भेज दिया। दुर्वासा महाराज वहां आके पहुंच गए। अरे तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा आइए आइए महाराज आइए भोजन कीजिए। हाँ बोला भोजन जरूर करेंगे, शिष्य भी 10,000 हमारे साथ हैं, हम जाते हैं स्नान करके आते हैं नदी से, आप भोजन का प्रबंध कीजिए। द्रौपदी इनके लिए भोजन का प्रबंध, द्रौपदी का मैं तो प्रसाद ले लिया, मैं भोजन खा चुकी, अभी देख रहे थे आज कुछ नहीं निकलेगा कल निकलेगा। बोला कुछ भी करो भोजन तो करो, महाराज आया 10,000 चेलों के साथ आया है, एक एक चेले के साथ महाराज नहीं चलते थे, 10,000 चेलों के साथ चलते थे उस जमाने में महाराज, और सबकी व्यवस्था होती थी उन जमाने में। अब द्रौपदी कहती अरे क्या किसको बोलूं, हे तो भगवान, हे गोपाल कोई रक्षा करो, कृष्ण गोविंद। तो कृष्ण भगवान रुक्मणी ने द्वारका में भोजन की थाली रखी थी, वो ऐसे गिलास ले रहे थे, तो द्रौपदी ने याद किया हे कृष्ण ये समस्या हो गई है क्या। ओ तो भोजन वहां छोड़ के वहां रुक्मणी में कहा, बोला एक मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। उधर आके बोला द्रौपदी द्रौपदी, अच्छा है आप पधारे, अब तो हमारी समस्या का समाधान। बोला समस्या छोड़ो पहले भूख लगी है कुछ खाने को दो। अरे बोला खाने को तो पहले नहीं है घर में, इसीलिए तो आपको बुलाया है, खाने को नहीं, वो 10,000 के साथ आया है दुर्वासा, चाहिए दुर्वासा जाने दुर्वासा के चेले जाने, मैं भूख मर रहा हूं मेरे को दो। अरे तू ही मुसीबत भूख घर में, इधर कहां से आया, अभी है कुछ नहीं कहां से दूं। बोला कहां है तुम्हारा बर्तन लाओ। अंदर से बर्तन लाई, वो देखता है अंदर एक चावल का दाना, एक थोड़ा सा साग का टुकड़ा लगाया उठा के, और भगवान ने खाया। हाँ भगवान तुष्ट हो गया तो संसार सारा संतुष्ट हो गया। भगवान क्या एक टुकड़ा खाया और दुर्वासा अपने चेलों के साथ कहता अरे पेट भर गया, अब ये बुलाने आएंगे तो जाएंगे कैसे, खा नहीं पाएंगे, बिल्कुल जगह नहीं है। तो भगवान ने कहा कृष्ण का युधिष्ठिर महाराज आप जाओ दुर्वासा मानी को बुला के आओ कि भोजन है। बोला भोजन है कहाँ, घर में तो चूल्हा भी नहीं जल रहा है, मैं झूठ बोलता नहीं हूं आपको मालूम है, सत्य मैं तो सच बोलने वाला हूं, मैं कैसे जाके उसको बोलूंगे भोजन तैयार है। अर्जुन तुम जाओ, भीम तुम बोलो जाओ उसको भोजन। बोला मैं आपको पागल में ही नजर आया हूं क्या, अरे होता तो मैं नहीं खाता, है ही नहीं कुछ, यहां दिखता है तो मैं कैसे जाके उनको बोल लूं, अब घर में पकाया नहीं तो मैं कैसे बोलूं जाके। अर्जुन बुला के आओ दुर्वासा जी को। अर्जुन बोला आप कहते हैं भोजन तैयार है तो हमारे को विश्वास है कि भोजन तैयार होगा ही नहीं, तो आपकी बात को तो हम नहीं, आपकी बात के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है। अर्जुन ने बोला हम जाते हैं। अर्जुन जाके बोलता है महाराज चलिए भोजन कीजिए। महाराज बोला मैं तो नहीं खा सकता हूं, चलो। चले बोलते हैं हमारे को पेट भरा हुआ, हम बिल्कुल नहीं खा सकते, हमको माफ कीजिए, कोई खाने को नहीं आ रहा। तो भगवान इतने छोटे तिनके से भी संतुष्ट होते हैं, उनको ज्यादा कुछ बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं है, बड़े संसार का भोग पदार्थ की जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्य प्रच्छति, अरे कोई प्रेम से मुझे पत्ता एक तुलसी का अर्पण करता है, पुष्पम एक फूल देता है, फलम एक बेर देता है सबरी की तरह। अब सबरी के पास था क्या, सबरी एक नीच जात की थी, भील जात की थी, छोटी उम्र की थी, उसकी शादी होने वाली थी, शादी के लिए उसके बाप ने बारातियों को भोजन खिलाने के लिए 50-100 बकरे लाके रखे। तो सबरी ने देखा ये बकरे काय के लिए हैं, बोला तुम्हारे बाराती कल आएंगे ना उनको भोजन खिलाएंगे। बोले इतने लोगों इतने बकरों को इतने पशुओं को मारना पड़ेगा मेरी शादी के लिए, बोला हाँ वो सब बाराती आएंगे, उनको तो ये मांस खुलाना पड़ता है। सबरी ने कहा हे भगवान, मेरी शादी और इतनों की बर्बादी, ये तो ठीक नहीं है। आधी रात की उठी, सबको छोड़ दिया, जाओ जाओ बकरों को भगा दिया। बाप ने बोला ये क्या कर रही है, कल क्या करेंगे बाराती? बोला नहीं नहीं इनको नहीं मारना है। और आधी रात को खुद भी वहां से निकली, भागी। अकेली भागती हुई जंगल में जाती है, सुबह हो गई। सुबह देखती है तो कोई महाराज का आश्रम है, मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि आश्रम में खड़े हैं, जाके चरणों में, बेटी क्या चाहिए? बोला किसकी बेटी हो, अकेली स्त्री? स्त्री अकेली वन में हो नहीं सकती है, किसी की पत्नी होनी चाहिए तो पति साथ होना चाहिए, बेटी होना चाहिए तो बाप होना साथ होना चाहिए। लड़की अकेली नहीं घूम सकती, बेटी है तो बाप होना चाहिए और स्त्री है तो पति होना चाहिए। अकेली बेटी जहां कहां घूम रही है? ये मर्यादा है संसार शास्त्र की कि कन्या को अकेला कहीं वन में नहीं घूमना चाहिए। तुम कहां घूम रहे बेटे? बोला मेरा तो न कोई पति है न कोई पिता है, आप ही मेरे सब कुछ है। तो ठीक है बेटी, चलो तुम सेवा करो। आश्रम में ले गया, बेटी तुम सेवा करो, राम मिलेंगे। बोला कहां सेवा करूं? बोले साधु संतों के आश्रम में जाकर सेवा करो। बेचारी साधु के आश्रम में जाके झाड़ू निकाले, पानी भर के रखे, लकड़ी लाए तो पता लग गया भील है। अरे निकलो निकलो, ये तो हमारा आश्रम अपवित्र कर दिया, उनको डंडा मार के निकाल दिया। अरे महाराज महाराज देखो, ये मेरे को सेवा कोई नहीं दे रहा है, वो डंडा मार के निकाल दिया। बोला बेटा सेवा करो, राम मिलेंगे। अरे राम मिलेंगे, सेवा कोई नहीं दे रहा है। फिर दीवार फांद के रात को 2-3 बजे जाके झाड़ू निकाल के आ जाती, सेवा करके आ जाती। अब ये सेवा कर रही है सबरी, अब सबरी की उम्र बूढ़ी होने लगी। जवान घर से शादी के दिन भागी थी, मतंग ऋषि भी आके बड़ी उम्र हो गई, मतंग ऋषि संसार त्यागने का समय आया। बोला मैं जा रहा हूं। बोला आप भी जा रहे हैं गुरुजी, अब मैं किसके शरण में जाऊं, कहां कहां? बोले बेटी तुम बैठो, राम आएंगे। अब राम आएंगे इस बात के इतना विश्वास पक्का था शबरी को, रोज सुबह वो 2-3 किलोमीटर रास्ता जाके झाड़ू देके साफ करती, फूल बिछाती, अच्छे से बेर ला के रखती कि अभी राम आएंगे। वो जवानी से ये उसका क्रिया चलती रही, शबरी बूढ़ी हो गई और रोज ये सफाई करती थी। ये नहीं कि अभी राम नहीं आए, नहीं, विश्वास इतना पक्का था कि गुरुजी ने कहा है राम आएंगे तो राम आएंगे। रोज जाए, रास्ते में बूढ़ी हो गई, रास्ता साफ करिए। तो एक दिन भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के साथ आए, पूछते हैं मां सबरी का आश्रम कहां है? बोला उधर है, क्या करना है, कौन है? बोला उनसे मिलना है। कौन? राम। ओ भगवान राम आए, उधर ही सबरी ऐसे का ऐसे भगवान के चरणों में दंडवत गिर पड़ी। वो बने हुए अपने पास बेर से भगवान को अर्पण किए, और भगवान का दर्शन करने के बाद सबरी जीवित नहीं रही, फिर तो भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन उस दिन तक उस विश्वास के साथ रोज तैयारी करती थी भगवान की। तो भगवान को घर में रोज भोग लगाना है, रोज भगवान की सेवा करनी है। एक दिन भगवान आएंगे ये निश्चित होना चाहिए कि एक दिन भगवान हमारे घर में भी आएंगे, इतना पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे घर में आएंगे, भगवान प्रकट होंगे। और भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान को कहीं और से आने की जरूरत पड़ती है कि भगवान को कोई गाड़ी को या ऑटो नहीं मिला तो पहुंचेगा नहीं, ऐसा भगवान हमारी तरह नहीं चलते हैं। अरे वो भाव में प्रकट होते हैं, सबकी दिल में बैठे हुए हैं, वो तो दिल के अंदर से बाहर आते हैं, दिल में ही उनको प्रकट होना है, अंदर ही रहते हैं लेकिन अभी पर्दा ओढ़ के बैठे हुए हैं। सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, फिर क्या करते हैं? ना हम प्रकाशन्ति सर्वसह योग माया समावर्त, मैं योग माया से अपने आप को ढक के रखता हूं। क्यों ढक के रखते हो? मूर्ख मुझे जानते नहीं है, जब जानते नहीं है तो मैं उनके सामने प्रकट होकर क्या करूं? मुझे जानते ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तो हम पहले भगवान को जाने। भगवान को जानेंगे कैसे? मैं यहां से कथा शुरू की थी कि जीवन में भगवान को जानने की जिसको जिज्ञासा होती है उसका मानव जन्म सफल है। मानव जन्म मिला ही इसलिए है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हमारा वेदांत लिखता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मानव जन्म मिला है तो ये जिज्ञासा कर लो, ये जानकारी कर लो कि तुम कहां, तुमको जाना है। अभी हम लोग यहां बैठे हैं, हम आपसे ये प्रश्न अगर पूछें कि भाई अब देखो 10-20 हो गए, हम 10-20 हो गए, 10 मिनट के बाद कथा समाप्त कर देंगे सत्संग, फिर आप लोग अपने अपने घर जाएंगे, आपको मालूम है आपका घर कहाँ है? मैं अगर ये प्रश्न आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? हंसेंगे ना कि अभी हम अपने घर से आए हैं दो घंटे पहले, अभी हम अपने घर जाएंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमें अपने घर का रास्ता मालूम नहीं है क्या? तो आपको तो हंसी लगेगी ना कि भाई अपने घर जाओगे, आपको रास्ता मालूम है? मैं पूछूंगा ना, आपको मालूम नहीं है, आप बाहर से आए, हम तो अपने घर से अभी आए। ये तो सभी यही प्रश्न का उत्तर देंगे ना। तब हम एक और प्रश्न पूछते हैं कि आज 2006 है, एक दिन 2060 भी आएगा, क्योंकि हमने 1960 भी देखा है, अब 2006 देख रहे हैं, तो 2060 आएगा तब हम में से बहुत कम यहां होंगे। 2060 भी आएगा और हम में से कम यहां होंगे, हम में से बहुत कम बाकी बचेंगे, तो उस वक्त कहां जाना है इसकी मालूमात है किसी? जब हम यहां नहीं होंगे तो कहीं तो जाएंगे ना, कहां जाएंगे इसका पता है हमको? ये अगर पता नहीं है कि हमें घर से निकाला जाएगा और हमें पता नहीं है जाना कहां है, तो हम दर बदर के ठोकरें खाएंगे ना। तो मानव जन्म इसलिए है कि यह जानकारी कर लो कि जब यहां से हमारा टाइम पूरा होगा तब कहां जाना है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पता क्या है, और वहां हम जाएंगे तो हमको कौन रिसीव करेगा? आज सुबह भागवत की कथा कर रहे थे, चौथा स्कंद श्रीमद् भागवत का चल रहा था, ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा था। ध्रुव महाराज छोटी अवस्था 5 साल की में तो जाके नारद मुनि के शिक्षा के ऊपर मधुबन में तपस्या करके भगवान का साक्षात दर्शन किया विष्णु का, लेकिन दर्शन करने के बाद भी भगवान के वापस घर लौट के आया, 33,000 साल तक राज किया, सत्ययुग का समय था, लेकिन राज करने के बाद फिर ये निश्चय किया कि राज के भोग सब ये एक दिन समाप्त होने वाले हैं, ये समाप्त हो जाए उससे पहले मुझे इसको छोड़ना चाहिए, और ध्रुव महाराज उसको छोड़ के चले गए बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम में जाके भगवान की भक्ति की, और ऐसी भक्ति की कि भगवान विष्णु का विमान नीचे उतरा नंद और सुनंद के साथ, दो विष्णु दूतों के साथ, और कहा कि ध्रुव आप इस विमान के ऊपर चलिए और चढ़िए और सीधा आपको वैकुंठ से हम लेने आए हैं। तो इतना भजन करना चाहिए कि गाड़ी ऊपर से आपको लेने आए, वो विष्णु दूत लेने आए। तब जब चढ़ने के लिए पांव ऊपर किया तो मृत्यु सामने आई कि ये मृत्यु संसार है, या मरने के बगैर कोई नहीं जाता है महाराज आप। ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर के ऊपर पांव रखा, मूर्धन्य पाद, अपना चरण जो है मौत के सर के ऊपर रख के विमान के ऊपर चढ़े। तो ऐसा इस जन्म के अंदर, मानव जन्म इसलिए मिला है कि इसके अंदर हम किसी सतपुरुष साधु के संग में बैठकर कहां जाना है उसके बारे में जाने, और ऐसा जाने कि जाने से पहले दुनिया देखे ना देखे लेकिन हम जरूर उस वक्त देखें कि हमें लेने के लिए वो आया है जिसको हम सारा जन्म याद किया करते थे, जिसको हम रोज याद करते थे, जिसका हम स्मरण करते थे, आज वो हमको लेने आया है। इतनी तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो, जमुना जी का तट हो, वंशी वट हो, सांवरा निकट हो, इतनी कृपा करना। बड़ा सुंदर ये भाव है कि उस समय भगवान, जाना तो पड़ेगा, ऐसे तो कोई नहीं कह सकता मैं जाऊंगा नहीं, 2060 भी आएगा लेकिन हम में से कौन होगा भगवान जाने, तो जाना तो पड़ेगा, तो कहां जाना पड़ेगा ये अगर पता नहीं करते हैं तो बुद्धिमानी तो नहीं है ना। इस आदमी को बुद्धिमान कोई नहीं कहेगा जिसको ये पता नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा। अब ट्रेन में किसी से पूछो बैठा हुआ, अरे भैया कहां उतरोगे? बोला पता नहीं कहां उतरूंगा। आप क्या कहोगे उसको? मूर्ख है, कहीं तुम्हें पता नहीं है कहां उतरोगे? नहीं बैठा हूं, जहां मन आया उतर जाऊंगा। वो पागल ही उसको कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो हमारी स्थिति उस पागल से कम नहीं है, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम कहां जाएंगे तो हमें मालूम नहीं है। तो ये जानकारी मानव जन्म में लेना जरूरी है। और वैसे भी तो हम लोगों ने अपना घर छोड़ा, अपने जमीनें जायदाद छोड़ी किस चीज के लिए? धर्म के लिए ना। हम क्यों छोड़ के आए अपना मुल्क? धर्म के लिए ना। तो धर्म को तो फिर यहां छोड़ो नहीं, उसको तो ठीक तरह से पकड़ के रखना चाहिए ना। जिस काम के लिए सब कुछ छोड़ा उस चीज को क्यों हाथ से जाने दे? तो यहां तो ठीक तरह रोटी जो भगवान वहां रोजी देता था वही यहां देता है, दूसरा भगवान कोई यहां का नहीं है। इस दुनिया को चलाने वाला भगवान कोई दूसरा नहीं है, जो उधर था वही यहां है, जो उसने तुम्हारे भाग में जो लिखा है वो वहां दिया था वो यहां भी दे रहा है। अच्छा है बुरा है ये आपकी कमाई का आपको मिल रहा है, वो तो सिर्फ सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, लेकिन कमाई आपकी है। तो जो सुख आपको वहां मिलने थे वो यहीं मिलने हैं, और जो दुख वहां मिलने थे वो यहां भी मिलेंगे। इसलिए भगवान वही है, धर्म का जो आचरण करता है, धर्म रक्षति रक्षते, जो धर्म का आश्रय लेता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म चार चीजें तो मानुष जन्म में और पशु जन्म में एक जैसी है, आहार निद्रा भय मैथुन्य, पशु भी समान है, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, अपने सुरक्षा के लिए घर बनाना मकान बनाना, ये तो पशु भी करते हैं, ये तो बराबर दोनों में समान है। रोटी हम भले प्लेट में खाएं और वो नीचे फेंको खाएं, लेकिन पेट ही तो भरना है। धर्म अधिको, एक धर्म अधिक है, धर्म अधिक है, जब तक धर्म धारण नहीं करेंगे तब तक जीवन हमारा सफल नहीं होगा, तो धर्म धारण करना अति आवश्यक है। तो आखिरी समय भी अगर एक मिनट भी जीवन त्यागने से पहले मन में ये भाव आ जाए कि मेरे को भगवान से संबंध स्थापित करना है, तो भी भाग्यशाली है। बचपन में नहीं आया तो कोई बात नहीं, प्रहलाद महाराज कहता है बचपन में भगवान का नाम लेना चाहिए, बचपन तो हमारा बीत गया कोई बात नहीं, जवानी में लेना चाहिए, लेकिन वो भी बीत गई, लेकिन अभी भी टाइम गया नहीं, अभी भी निश्चय करके भगवान का स्मरण का रोज नेम बनाना चाहिए। मैं कहता जितना टीवी देखने का नेम है उससे आधे जितना भी नेम भगवान के भजन का करोगे ना तो जन्म सफल हो जाएगा, उसके आधे जितना टाइम इस काम के लिए निकालो, निश्चित रूप से निकालो, तभी जन्म सफल होगा, तभी हमारे जीवन का कोई लक्ष्य प्राप्त होगा। नहीं तो खा पी के कमा के लई, हमसे पहले बोरसद गांव आपने कभी देखा था क्या? आपने बाप दादा को देखा तो नहीं था, किसका था पता नहीं, पहले कौन यहां मालिक थे, आज हम समझते हैं हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, कोई और हो जाएगा, ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन भगवान से हमारा रिश्ता हमेशा का है, संसार के रिश्ते तो आज हैं कल खत्म हो जाएंगे, भगवान का सच्चा रिश्ता है, उस रिश्ते से अपना रिश्ता जोड़ना बुद्धिमानी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। फिर कोई सवाल कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलो हरे राम 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 हरे हरे।